नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम मंदनिया माता भगवती देवी शर्मा जी की एक बहुत ही प्रभावशाली पुस्तक परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति नारी, इसके एक विशेष अध्याय पर गहराई से बात करेंगे।
जी,
अध्याय का शीर्षक है नारी की एकाकी सत्ता समग्र उद्यान के समतुल्य। तो आज हम कोशिश करेंगे कि वंदनिया माता जी का जो ये मूल संदेश है, ये जो रूपक उन्होंने दिया है, उसे समझें।
बिल्कुल, ये रूपक अपने आप में बहुत गहरा है।
हाँ, तो चलिए इसे खोलते हैं। मतलब एक नारी की सत्ता और एक पूरा उद्यान, एक बगीचा,
जी
ये कैसे?
जी, और वो इसकी तुलना करती हैं एक अकेले खड़े खजूर के पेड़ से।
अच्छा।
जो शायद बहुत ऊंचा हो, भव्य दिखे, पर उसमें वो बात नहीं होती जो एक पूरे उद्यान में होती है, वो शोभा, वो उपयोगिता।
सही कहा, उद्यान तो जैसे एक भरा पूरा संसार होता है अपने आप में।
बिल्कुल, और देखिए वंदनिया माता जी उद्यान के लाभों को कितने विस्तार से देखती हैं।
ये सिर्फ सुंदरता या फल फूल की बात नहीं है।
हाँ, उन्होंने गिनाया है ना? जी हाँ, वो कहती हैं कि उद्यान तो पक्षियों का बसेरा है, राहगीरों के लिए विश्राम की जगह है, आस पड़ोस को सुगंध देता है, व्यापारियों को फल मिलते हैं, और तो और माली का परिवार पलता है उससे, उसे स्वास्थ्य लाभ होता है, श्रेय मिलता है, और जिसने लगाया है उसे संतोष, यश और यहाँ तक कि परलोक का पुण्य भी। मतलब एक पूरी व्यवस्था है ये।
वाओ, यानी ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक ऐसा केंद्र है जहां से जीवन और पोषण कितनी दिशाओं में फैलता है। और फिर इसी विचार को वंदनिया माता जी परिवार से भी जोड़ती हैं।
जी बिल्कुल, वो कहती हैं परिवार एक उद्यान है। जैसे उद्यान में तरह तरह के पौधे साथ मिलकर बढ़ते हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं, वैसे ही परिवार।
और ये बात दिलचस्प है कि ये सिद्धांत सिर्फ मनुष्यों पर लागू नहीं होता है ना?
सही कहा आपने। वंदनिया माता जी प्रकृति के उदाहरण देती हैं। पक्षी देखिए घोंसले बनाते हैं, परिवार की तरह रहते हैं।
हाँ।
पशु झुंड में चलते हैं, और छोटे जीव भी जैसे चींटी, दीमक, मधुमक्खी, ये सब समूह में रहकर एक सहकारी जीवन जीकर ही अपनी सार्थकता पाते हैं।
तो मतलब उनका जोर इस बात पर है कि जो एकाकी रहते हैं, शायद उन्हें कुछ और मिले, पर वो उस सामूहिक जीवन के आनंद से, उस सहयोग के सुख से वंचित रह जाते हैं।
बिल्कुल, एक तरह से ये जीवन का मूल सिद्धांत है। मिलजुल कर रहने में, जुड़कर रहने में ही असली सार्थकता और आनंद है।
तो फिर इस उद्यान वाली बात को, इस सामूहिक जीवन के विचार को वंदनीय माता जी खास तौर पर नारी से कैसे जोड़ती हैं? यहीं पर उनका मुख्य तर्क आता है शायद।
हाँ, यहीं वो कहती हैं नारी की सत्ता मूर्तिमान परिवार है। मतलब नारी का जो अस्तित्व है वो अपने आप में एक चलता फिरता परिवार है।
अच्छा, ऐसा क्यों?
उनके अनुसार नारी की जो शारीरिक बनावट है, उसकी जो मानसिक संवेदनाएं हैं, वो उसे कुदरती तौर पर स्वाभाविक रूप से परिवार बनाने, उसे सहेजने, उसे आगे बढ़ाने और बहुत महत्वपूर्ण बात, उसे सुसंस्कृत बनाने के लिए सक्षम बनाती हैं। वो जहां होती है वहां अपने आप एक पोषण का, एक स्नेह का वातावरण बनने लगता है, एक जुड़ाव पैदा होता है।
तो जैसे उद्यान अपने होने भर से आसपास की जगह को जीवन दे देता है, वैसे ही नारी।
बिल्कुल सही, अध्याय का निष्कर्ष भी यही है कि नारी जहां रहती है वो जगह अपने आप में एक उद्यान बन जाती है। वो अपने स्वभाव से, अपने कर्तव्यों से पूरे माहौल में एक उल्लास, एक सकारात्मकता भर देती है।
तो इस तरह वंदनिया माता जी नारी को सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में नहीं देख रही।
नहीं, बिल्कुल नहीं, वो उसे सामूहिक कल्याण और आनंद का एक जीवंत स्रोत मानती है। एक तरह से ये हमें व्यक्ति और समाज के ताने बाने पर, उनके रिश्ते पर दोबारा सोचने को मजबूर करता है।
तो अगर हम संक्षेप में कहें तो वंदनिया माता जी की दृष्टि में नारी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है, एक उद्यान जो सामूहिक जीवन और पोषण के लिए जरूरी है, और परिवार और प्रकृति के समुदायों से उसकी तुलना करके वो इस विचार को और पुख्ता करती हैं।
जी, ये रूपक नारी के प्रभाव की गहराई और उसकी व्यापकता को समझने की एक बहुत अच्छी कुंजी है।
बिल्कुल, तो इस विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक प्रश्न छोड़ सकते हैं।
हाँ जरूर, ये सोचा जा सकता है कि वंदनिया माता जी की ये जो उपमा है उद्यान रूपी नारी, इसे आज के बदलते हुए सामाजिक माहौल में कैसे देखें? व्यक्ति और समुदाय के बीच जो संतुलन है उसके बारे में ये हमें क्या सोचने पर विवश करता है?
सही, इस पर मनन करना यकीनन सार्थक होगा। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।
धन्यवाद।